एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र आय की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जिसके इर्द गिर्द ना काफी रहस्य और कह सकते हैं गलत फहमियां रहती हैं।
हाँ,
मनोचिकित्सा यानी साइकैट्री।
हाँ बिल्कुल, अक्सर हम फिल्मों वगैरह में देखते हैं तो एक अलग ही तस्वीर देखती है, कभी थोड़ी डरावनी, कभी बहुत ही उलझी हुई। तो हमने सोचा क्यों ना आज इस पर थोड़ी रोशनी डाली जाए।
और इसके लिए हम आधार बना रहे हैं टॉम बर्न्स की किताब साइकैट्री, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन को। ये किताब ना इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को समझने में वाकई मदद करती है।
और देखिए, आजकल मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना कितना जरूरी हो गया है,
हाँ।
पहले से कहीं ज्यादा। तो ये किताब हमें एक संतुलित नजरिया देती है कि भाई मनोचिकित्सा असल में है क्या, इसका लक्ष्य क्या है, इसका इतिहास कैसा रहा और आज क्या चुनौतियां हैं इसके सामने।
हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी बातचीत को।
से पहले लेखक की बात करते हैं। टॉम बर्न्स ये सिर्फ कोई लेखक नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सोशल साइकाइट्री के प्रोफेसर एमेरिटस हैं।
सोशल साइकाइट्री, ये टर्म थोड़ा अलग है ना आम साइकाइट्री से।
हाँ, और यही खास बात है। इसका मतलब है कि उनका ध्यान सिर्फ ब्रेन केमिस्ट्री या दवाओं तक ही सीमित नहीं है। वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमारे सामाजिक और परिवेशीय कारक,
जैसे
जैसे परिवार का साथ है या नहीं, नौकरी, घर का माहौल, समाज का रवैया कैसा है, ये सब चीजें हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर और ठीक होने की प्रक्रिया पर कितना गहरा असर डालती हैं।
सही कहा। और उनका दशकों का क्लिनिकल अनुभव है, मतलब वो सिर्फ थ्योरी नहीं जानते, उन्होंने जमीन पर काम किया है, खासकर गंभीर मानसिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों के साथ।
हाँ, वो असर्टिव कम्युनिटी ट्रीटमेंट टीम्स के साथ उनका काम। ये वो टीम्स होती हैं जो अस्पताल के बाहर मरीज के अपने माहौल में इलाज करती हैं, तो उन्हें प्रैक्टिकल दिक्कतों का अंदाजा है।
बिल्कुल, और यही चीज उन्हें इस किताब के लिए एकदम सही बनाती है। वो विज्ञान को भी समझते हैं और इंसानी पहलू, सामाजिक संदर्भ, उसको भी उतनी ही अहमियत देते हैं। वो ना तो साइकेट्री के मतलब कट्टर समर्थक हैं और ना ही एकदम आलोचक, एक बैलेंस्ड व्यू मिलता है।
अच्छा, तो फिर ये किताब असल में है किस बारे में? क्या ये कोई भारी भरकम टेक्स्ट बुक टाइप है?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इसे आप एक तरह का परिचय समझ सकते हैं, आधुनिक मनोचिकित्सा की दुनिया का एक संक्षिप्त लेकिन काफी व्यापक परिचय। मकसद यही है कि जो आम धारणाएं हैं, डर हैं, उनको थोड़ा दूर किया जाए।
तो ये उस बड़े सवाल का जवाब देती है कि भाई साइकेट्री है क्या, इसका रोल क्या है।
हाँ, कि मनोचिकित्सक करते क्या हैं, ये फील्ड कैसे पुराने डरावने पागल खानों से निकलकर आज कम्युनिटी केयर तक पहुंचा है, मानसिक बीमारी का पता कैसे लगता है, इलाज के क्या तरीके हैं, ये सब कुछ।
और बर्न्स इस बात पर भी जोर देते हैं कि ये सिर्फ खराब दिमाग को पहचान कर गोली देने जैसा नहीं है।
बिल्कुल, वो कहते हैं कि मनोचिकित्सा एक बहुत गहरी पहेली से जूझती है जिसे मन मस्तिष्क समस्या यानी माइंड ब्रेन प्रॉब्लम कहते हैं।
मन मस्तिष्क समस्या, ये थोड़ा और समझाएंगे, थोड़ा पेचीदा लगता है।
हाँ है। तो देखिए, हमारा मन है हमारी सोच, भावनाएं, हमारा मैं होने का अनुभव, और हमारा मस्तिष्क है शरीर का एक अंग, न्यूरॉन्स का जाल। सवाल ये है कि ये दोनों कैसे जुड़े हैं, हमारा सब्जेक्टिव अनुभव हमारे भौतिक दिमाग से कैसे पैदा होता है। मनोचिकित्सा इसी मुश्किल जगह पर काम करती है।
अच्छा, जहां शरीर और अनुभव मिलते हैं।
एग्जैक्टली, ये सिर्फ बायोलॉजी की बात नहीं, ये व्यक्ति के पूरे अस्तित्व की कहानी है। और बर्न्स कहते हैं कि सबसे प्रभावी मनोचिकित्सा वही है जो इस जटिलता को मानकर चलती है।
और यहीं पर वो बायो साइको सोशल मॉडल आता है जिसकी बात आप कर रहे थे।
हाँ बिल्कुल, बायो साइको सोशल मॉडल ये किताब का केंद्रीय विचार है। बायो यानी बायोलॉजिकल पहलू, जीन्स, ब्रेन केमिस्ट्री, साइको यानी मनोवैज्ञानिक पहलू, हमारी सोच, भावनाएं, हमारे जीवन के अनुभव, और सोशल यानी सामाजिक पहलू, हमारा परिवार, समाज, संस्कृति, आर्थिक स्थिति। मनोचिकित्सा का लक्ष्य इन तीनों को ध्यान में रखकर व्यक्ति की मदद करना है।
ये तो वाकई एक होलिस्टिक अप्रोच लगती है। इस पर और बात जरूर करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा इतिहास देख लें। आपने पागल खानों का जिक्र किया था, वो दौर कैसा था?
हाँ, इतिहास समझना जरूरी है ये जानने के लिए कि हम कहाँ से चले हैं। पहले तो स्थिति बहुत खराब थी, जिन्हें मानसिक बीमार समझा जाता था उन्हें समाज से अलग भयानक असाइलम में बंद कर दिया जाता था। जंजीरें, गंदगी, अमानवीय व्यवहार,
डरावना है
बहुत। फिर 18वीं सदी के आखिर में फ्रांस में फिलिप पिनेल जैसे मोग आए. उन्होंने नैतिक उपचार मॉरल ट्रीटमेंट की शुरुआत की. मतलब उन्होंने कहा कि ये लोग कैदी नहीं मरीज हैं, इन्हें साफ हवा, अच्छा खाना, इंसानियत भरा बर्ताव मिलना चाहिए. यह उस वक्त बहुत बड़ी बात थी.
और फिर 20वीं सदी में बड़े बदलाव हुए होंगे.
हाँ, दो बड़े नाम सामने आते हैं. एक जर्मनी के एमिल क्रिपेलिन. उन्होंने पहली बार बीमारियों को उनके लक्षणों के पैटर्न के आधार पर बांटना शुरू किया. जैसे उन्होंने सिज़ोफ्रेनिया और मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, आज का बाइपोलर डिसऑर्डर, को अलग अलग ग्रुप में रखा. इससे आज के डायग्नोस्टिक सिस्टम जैसे DSM और ICD की नींव पड़ी.
अच्छा, मतलब बीमारियों को समझने का एक सिस्टम बनाने की कोशिश. और दूसरा नाम?
वो थे सिगमंड फ्रॉयड, मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस के जनक. फ्रॉयड ने कहा कि हमारे मन के लक्षण, हमारी परेशानियां, वो बेवजह नहीं है. उनका कनेक्शन हमारे अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, हमारी दबी हुई इच्छाओं और बचपन के अनुभवों से है.
वो भी एक बड़ा मोड़ रहा होगा.
बिल्कुल. 1950s के दशक में पहली असरदार एंटीसाइकोटिक दवा क्लोरप्रोमेजीन की खोज हुई. इसने पहली बार सिज़ोफ्रेनिया जैसे गंभीर विकारों के कुछ लक्षणों को काबू करने में मदद की. और इसी के बाद वो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन वाली बात शुरू हुई.
यानी बड़े अस्पतालों को बंद करके समुदाय में इलाज.
हाँ, विचार ये था कि दवाएं लक्षणों को कंट्रोल कर लेंगी तो मरीजों को अस्पतालों में बंद रखने की जरूरत नहीं, वो समुदाय में रहकर इलाज करवा सकते हैं. सिद्धांत में अच्छा था, पर इस पर बाद में आएंगे कि ये कितना सफल हुआ.
ठीक है, इससे पहले वो डायग्नोसिस वाली बात, DSM और ICD मैनुअल्स. आजकल इन पर काफी बहस भी होती है कि ये चीजों को जरूरत से ज्यादा मेडिकलाइज कर देते हैं. बर्न्स क्या कहते हैं?
बर्न्स इन्हें जरूरी मानते हैं. देखिए, डॉक्टरों और रिसर्चरों को आपस में संवाद करने के लिए, किसी स्थिति को पहचानने के लिए एक कॉमन भाषा तो चाहिए. ये मैनुअल्स वही भाषा देते हैं. लेकिन वो ये भी मानते हैं कि ये परफेक्ट नहीं है, इनमें कमियां हैं. एक खतरा ये है कि हम इंसान की तकलीफ को भूलकर सिर्फ लेबल पर फोकस करने लगें, या फिर जिंदगी के सामान्य दुख दर्द को भी बीमारी का टैग लगा दें. तो वो इन्हें जरूरी लेकिन अपूर्ण मानते हैं. प्रैक्टिकल टूल हैं पर अंतिम सत्य नहीं.
ये बात सही है. कहीं हम डायग्नोसिस के चक्कर में इंसान की कहानी तो नहीं खो देते.
बिल्कुल. और इसीलिए वो बायो साइको सोशल मॉडल इतना जरूरी है. वो हमें याद दिलाता है कि लेबल से आगे देखो. बायो, क्या कोई जेनेटिक कारण है? ब्रेन केमिस्ट्री में कुछ गड़बड़ है? साइको, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? वो तनाव से कैसे निपटता है? क्या कोई ट्रॉमा रहा है? उसकी सोच का पैटर्न क्या है? सोशल, क्या परिवार का साथ है? नौकरी, घर की स्थिति कैसी है? समाज का दबाव, अकेलापन.
इसका कोई उदाहरण देकर समझा सकते हैं? जैसे डिप्रेशन.
हाँ बिल्कुल. मान लीजिए किसी को डिप्रेशन है. हो सकता है उसके परिवार में डिप्रेशन की हिस्ट्री हो, ये बायो फैक्टर. फिर शायद हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ हो या नौकरी चली गई हो, जिससे वो बहुत निराश और हताश महसूस कर रहा है, साइको फैक्टर. और साथ ही वो किसी नए शहर में अकेला रहता है, उसके दोस्त या परिवार वाले पास नहीं हैं जिनसे वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके, सोशल फैक्टर.
अच्छा, तो ये तीनों चीजें मिलकर बीमारी पैदा कर सकती हैं.
हाँ, बॉन्स कहते हैं कि अक्सर ऐसा ही होता है. ये तीनों धागे आपस में उलझे होते हैं. सिर्फ ये कहना कि सेरोटोनिन कम हो गया है, ये पूरी कहानी नहीं बताता. इसीलिए इलाज का लक्ष्य भी इन तीनों पहलुओं को देखना होना चाहिए.
तो इलाज में भी ये तीनों एंगल आते हैं, दवाएं, थेरेपी और सामाजिक सपोर्ट.
बिल्कुल. इलाज के दो मुख्य तरीके हैं. एक फार्माकोलॉजिकल, यानी दवाएं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक्स, मूड स्टेबलाइजर्स वगैरह. ये अक्सर बहुत प्रभावी होती हैं, खासकर गंभीर लक्षणों को कम करने में. लेकिन ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है और इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं.
और दूसरा तरीका है साइकोलॉजिकल थेरेपी.
हाँ, जिसे टॉकिंग थेरेपी भी कहते हैं. इसमें कई अलग अलग अप्रोच हैं, जैसे साइकोडायनामिक थेरेपी, जो फ्रायड के विचारों पर आधारित है और हमारे अतीत के अनुभवों और अचेतन मन पर काम करती है.
और CBT भी काफी सुना है आजकल, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी.
हाँ, CBT बहुत पॉपुलर और प्रभावी मानी जाती है. ये इस बात पर फोकस करती है कि हमारी वर्तमान सोच, कॉग्निशन, हमारे व्यवहार, बिहेवियर और भावनाओं को कैसे प्रभावित करती है, और कैसे हम नकारात्मक सोच और व्यवहार के पैटर्न को पहचान कर उन्हें बदल सकते हैं. ये काफी प्रैक्टिकल अप्रोच है.
तो क्या थेरेपी दवाओं जितनी ही कारगर है?
देखिए, रिसर्च बताती है कि हल्के से मध्यम डिप्रेशन या एंग्जाइटी के मामलों में थेरेपी अक्सर दवाओं जितनी ही या कभी कभी उनसे भी ज्यादा कारगर हो सकती है. और कई बार सबसे अच्छा नतीजा दवा और थेरेपी के कॉम्बिनेशन से मिलता है.
अच्छा, मतलब बायो और साइको दोनों पर काम.
हाँ, और सोशल पहलू को भी नहीं भूलना चाहिए. परिवार का सपोर्ट, दोस्तों का साथ, काम का माहौल, ये सब भी इलाज का हिस्सा हैं.
अब उस डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पर वापस आते हैं, अस्पताल बंद करके समुदाय में इलाज। आपने कहा था कि ये पूरी तरह सफल नहीं हुआ।
हाँ, देखिए, इरादा नेक था। लोगों को समाज से अलग थलग रखने के बजाय उन्हें समुदाय का हिस्सा बनाए रखना, ये मानवाधिकारों के लिहाज से भी सही था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि कई जगहों पर बड़े अस्पताल तो बंद कर दिए गए, पर समुदाय में उतनी मजबूत और पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्थाएं खड़ी नहीं हो पाईं।
मतलब
फंड की कमी रही, प्रशिक्षित स्टाफ कम था, रहने की सही जगहें नहीं थीं, सामाजिक सपोर्ट सिस्टम कमजोर था। नतीजा ये हुआ कि बहुत से मरीज, खासकर गंभीर बीमारियों वाले, वो बीच में रह गए। कुछ बेघर हो गए, कुछ बार बार इमरजेंसी रूम में पहुंचने लगे। तो ये सपना अभी अधूरा है। कम्युनिटी केयर को मजबूत बनाना एक बड़ी चुनौती है।
और एक और बहुत मुश्किल मुद्दा है, अनिच्छुक रोगी का इलाज। मतलब अगर कोई इलाज नहीं चाहता तो क्या उसे जबरदस्ती इलाज दिया जा सकता है?
ये मनोचिकित्सा की शायद सबसे बड़ी नैतिक कश्मकश है।
हाँ, कानून कुछ खास परिस्थितियों में मनोचिकित्सकों को यह अधिकार देता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मानसिक बीमारी की वजह से खुद के लिए या दूसरों के लिए गंभीर खतरा बन गया है और उसमें अपनी स्थिति को समझने या इलाज के बारे में फैसला लेने की क्षमता, कैपेसिटी नहीं रह गई है, तो उसे उसकी मर्जी के बिना भी भर्ती और इलाज किया जा सकता है।
ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
हाँ, एक तरफ व्यक्ति की आजादी और दूसरी तरफ उसकी या दूसरों की सुरक्षा।
बिल्कुल, ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। बर्न्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये शक्ति समाज ने दी है और इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ होना चाहिए। ये दिखाता है कि मनोचिकित्सा सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं, इसका एक गहरा सामाजिक और कानूनी पहलू भी है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें या संदेश क्या निकलते हैं इस किताब से? एक तो मेरे ख्याल से यही कि मनोचिकित्सा विज्ञान और मानवीय अनुभव के बीच संतुलन साधने की एक लगातार कोशिश है।
हाँ, और मन मस्तिष्क समस्या हमेशा एक चुनौती रहेगी। दूसरा, बायो साइको सोशल मॉडल को अपनाना कितना जरूरी है। सिर्फ एक पहलू पर फोकस करना अधूरा है। भारत में तो हम ये देखते भी हैं, है ना, कैसे परिवार और समाज का सपोर्ट, सोशल फैक्टर, किसी के ठीक होने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है।
बिल्कुल।
तीसरा, डायग्नोसिस। वो जरूरी है बातचीत के लिए, रिसर्च के लिए, पर उसे इंसान पर हावी नहीं होने देना है। वो एक टूल है, पहचान पत्र नहीं। खासकर हमारे समाज में जो पागल का ठप्पा लगाने की प्रवृत्ति है, उससे बचने के लिए ये समझ जरूरी है।
चौथा, वो कम्युनिटी केयर वाली बात, वो एक अधूरा एजेंडा है। सिर्फ अस्पताल बंद कर देना काफी नहीं, समुदाय में वाकई मजबूत सपोर्ट सिस्टम चाहिए। और हमारे यहाँ भी इसमें काफी कमियां दिखती हैं। पांचवा, वो नैतिक जिम्मेदारी। मनोचिकित्सकों के पास जो खास कानूनी शक्ति है, उसके साथ आने वाली बड़ी जिम्मेदारी।
और शायद छठा, विज्ञान और मानवतावाद का संतुलन। भविष्य न्यूरोसाइंस में है, ब्रेन इमेजिंग में है, जेनेटिक्स में है, ये सब सच है। लेकिन बर्न्स याद दिलाते हैं कि आखिर में ये सब एक इंसान की मदद के लिए है। उसकी कहानी सुनना, उसके सामाजिक संसार को समझना, ये हमेशा जरूरी रहेगा।
किताब में कुछ ऐसे विचार हैं जो दिमाग में रह जाते हैं, अगर हम उन्हें अपने शब्दों में कहें, जैसे कि ये है,
मनोचिकित्सा की असली चुनौती और उसका चार्म इसी में है कि वो दिमाग, जो एक अंग है, और मन, जो हमारी पहचान, हमारे दुख सुख का केंद्र है, के मुश्किल पेचीदा संगम पर काम करती है। ये विज्ञान और अनुभव के मेल की बात है।
एक और, कि हमारे डायग्नोस्टिक मैनुअल परफेक्ट नक्शे नहीं है, बल्कि जरूरी नियम है जो बदलते रहते हैं। कमियों के बावजूद ये जरूरी है ताकि हम एक दूसरे की बात समझ सकें। ये डायग्नोसिस की सीमाओं और जरूरत दोनों को दिखाता है।
और मेरा पसंदीदा, बायोसाइको सोशल मॉडल कोई आसान रास्ता नहीं, बल्कि एक मुश्किल मांग है। ये कहता है कि किसी के डिप्रेशन को समझने के लिए आपको उसके सेरोटोनिन लेवल से लेकर उसकी सोच, उसके हाल के दुख और उसके घर के माहौल तक सब कुछ देखना होगा।
हाँ, ये समग्रता की मांग करता है।
बिल्कुल। और एक आखिरी, कि मनोचिकित्सा का भविष्य सिर्फ ब्रेन स्कैनर या जीन्स में नहीं है। न्यूरोसाइंस हमें शक्तिशाली औजार देगा, पर काम वही रहेगा, एक जटिल दुनिया में जी रहे इंसान की पीड़ा को कम करना।
तो ये सब बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकती है? इनका क्या मतलब है हमारे लिए?
देखिये, सबसे पहली चीज तो है स्टिग्मा, यानी वो जो सामाजिक कलंक जुड़ा है मानसिक स्वास्थ्य से, उसे कम करने में मदद। अगर हम समझें कि ये बीमारियां जटिल हैं, किसी की व्यक्तिगत कमजोरी नहीं, तो शायद हम दूसरों को और खुद को भी कम जज करेंगे।
और अगर हमें या हमारे किसी जानने वाले को मदद की जरूरत पड़ती है, तो ये समझ हमें डॉक्टर से बेहतर सवाल पूछने में मदद कर सकती है। हम सिर्फ दवा के बारे में नहीं, थेरेपी के बारे में, सोशल सपोर्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं। एक ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच की उम्मीद रख सकते हैं।
हाँ, और ये समझने में मदद मिलती है कि सिस्टम में कौन क्या करता है, साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या, सोशल वर्कर क्या, थोड़ा कन्फ्यूजन कम होता है।
और मुझे लगता है सबसे बढ़कर ये सहानुभूति पैदा करता है। हम डायग्नोसिस के पीछे के इंसान को देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि बीमारी से जूझना और कभी कभी सिस्टम से जूझना कितना मुश्किल हो सकता है।
सही कहा। और एक समाज के तौर पे ये हमें बेहतर सामुदायिक सेवाओं की वकालत करने के लिए एक आधार देता है। हम समझ सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।
तो आज की बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए शायद वो ऐतिहासिक यात्रा, कैसे हम इंसानों को जंजीरों में बांधने से लेकर आज उनके अधिकारों और समुदाय में रहने के हक की बात तक पहुंचे हैं। बेशक मंजिल अभी दूर है, पर यह सफर सोचने पर मजबूर करता है। और वो नैतिक दुविधाएं, खासकर जबरदस्ती इलाज वाली, वो याद दिलाती हैं कि ये कितना संवेदनशील और जिम्मेदारी वाला काम है।
आपके लिए,
मेरे लिए
वो बायो साइको सोशल मॉडल का महत्व, ये सिर्फ एक किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक नजरिया है जिसे हमें अपनी सोच में लाना होगा। और ये समझना कि मनोचिकित्सा लगातार विज्ञान और इंसानियत के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, ये बात बहुत अहम लगी।
कुल मिलाकर संदेश यही है कि मानसिक स्वास्थ्य जटिल है और इसे समझने और संभालने के लिए हमें एक करुणामय, एकीकृत और व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण की जरूरत है।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।